वहीं से जहां छोड़ा था। आखिरी क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اے اللہ ہم ہمیں حق دکھائیے جیسے کہ وہ واقعی ہے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے اور اے اللہ ہمیں باطل دکھائیے جیسا کہ وہ واقعی ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک پیاری پیاری دعائیں ہیں تو ان میں ہماری زندگی کا راز پوشیدہ ہے کہ ہمارا مقصد زندگی یہاں کیا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی دعا اسی کا مظہر ہے، اسی کی ایک بہترین دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ استعمال کیے نا اپنے رب کو پکارنے کے لیے تو ان کے اندر کامل بندگی چھپی ہوئی ہے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بندگی۔ تو بندگی حاصل کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے اور سب سے آسان طریقہ ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو واحد طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ بندگی حاصل کرنے کا، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہر کام کے اندر۔ تو دعاؤں کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے تو بندگی بہت آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ جیسے یہ دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اے اللہ حق بھی آپ ہمیں آپ ہی دکھا دیجئے جیسا کہ وہ واقعی ہے۔ ہم اگر خود حق تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اگر خود جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے، ہم شیطان سے مغلوب ہو جائیں گے، ہم اپنی چھوٹی سی عقل کی بنیاد پر غلط فیصلے کر جائیں گے۔ تو اپنے حق کی جو طلب ہے اس طلب کو اللہ کے حوالے کر دیا، اے اللہ آپ کے حوالے، آپ ہمیں حق دکھائیے۔ اور پھر حق دکھانے پر بات ختم نہیں کری، بلکہ اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرما دیجئے، رائٹ؟ آپ ہی عطا فرما دیجئے، تو ہی سب کچھ تو، میں کچھ نہیں، میرا عمل کچھ نہیں، میری خواہشات کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں میں۔ اس کو کہتے ہیں اپنی میں کو مٹا دینا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کامل سپرد کر دینا۔ صحیح ہے، جو اپنی میں کو مٹا لیتا ہے نا تو وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو اپنی میں کو نہیں مٹا سکتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میں مٹانے کے طریقے سے سکھائے ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے۔ کہیں پہ کسی نے کچھ ایک قول لکھا ہوا تھا کہ بکری جو ہے نا وہ میں کرتی ہے۔ ابھی تو بکریوں کا سیزن بھی آ گیا ہے پاکستان انڈیا میں، تو گھروں میں بھی بکرے اور بکریاں آنا شروع ہو گئے ہیں قربانی کے لیے نا، تو میں کی آوازیں کچھ لوگوں کے گھروں میں آلریڈی آ رہی ہوں گی۔ تو بکری اور بکرا کیا کرتے ہیں؟ میں، ہے نا؟ تو اب ان کے ساتھ میں کے بعد کیا سلوک ہوتا ہے؟ تو کسی عارف نے لکھا کہ میں کرتی ہے تو وہ چھری کے آگے کٹتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کی کھال ادھیڑی جاتی ہے، بکری کی کھال ادھیڑی جاتی ہے، اور پھر اس کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور پھر اس کو چولہے کے اوپر پکایا جاتا ہے۔ تو میں کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ है ना। और उसके मुकाबले में एक और परिंदा है, छोटा सा परिंदा, वो क्या करता है, मैं ना, उसको हम कहते भी हैं मैं ना, है ना, मैना का नाम सुना है ना, मैना परिंदा, जब चिड़िया होती है मैना, कोयल की तरह की होती है, तो वो क्या कहती है, मैं ना, यानी मैं नहीं, वो अपना इनकार करती रहती है। तो मैना जो है वो आज़ादी से उड़ती फिरती है, किसी को उससे तकलीफ नहीं होती, सब उसको पसंद करते हैं, भाई मैना आ गई। मैना एक अच्छी यानी एक पसंदीदा चिड़िया का नाम है, ये कव्वे की तरह से नहीं है ना, जिसको कि लोग पसंद नहीं करते, उसकी आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती, कौवा आ जाए तो उसको उड़ा देते हैं, राइट। मैना एक पसंदीदा चिड़िया है ना। तो वो उस आरिफ ने ये बात लिखी, यानी जो लोग मार्फत की बातें जिनको समझ में आती हैं, फिर उनको हर चीज़ में ना, दुनिया की हर मखलूक के अंदर फिर वही बातें नज़र आ रही होती हैं। बकरी के अंदर उनको मैं नज़र आ गई, और उसको उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि देखो छुरी के आगे कटना पड़ा उसको, और इस परिंदे के अंदर उसको अपनी मैं की नफी नज़र आ गई, तो मैं ना कह दिया कि भाई कितनी प्यारी बर्ड होती है ये मैं ना। सही है। तो इस दुआ के साथ हम आज की क्लास का आगाज करते हैं, जैसे कि हर क्लास का अल्लाह ताला की तौफीक से हम इस दुआ से ही आगाज करते हैं। तो जो आयत चल रही थी इबादुर रहमान के औसाफ के सिलसिले में सूरतुल फुरकान की, वो थी वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बि आयात रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मा व उमियाना। ये इबादुर रहमान की जो 13 सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान फरमाई हैं, उनमें से 12वीं सिफत के बारे में है, ठीक है। तो इसमें तर्जुमा बस पढ़ के फिर हम आगे से जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये वो लोग होते हैं, यानी इबादुर रहमान ये वो लोग होते हैं, इज़ा ज़ुक्किरू बि आयात रब्बिहिम, कि जब इनके सामने तज़किरा किया जाता है इनके रब की आयात का, रब्बिहिम इनका रब, और आयात का मतलब तो आयात हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करते हैं, लम लम जो है ना, ये भी नफी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, नहीं, तो लम यखिरू, ये नहीं गिर पड़ते हैं, अलैहा उन पर, यानी उन आयात को जो सुनते हैं ना, तो उनके ऊपर नहीं गिर पड़ते हैं, सुमन व उमियानन, ठीक है, यानी अंधों की तरह या बहरों की तरह, अंधे बहरों की तरह से नहीं गिर पड़ते हैं, ठीक है। तो इसकी तफसीर हमने पढ़ ली थी कि अंधे बहरों की तरह, यानी गिर पड़ने का मतलब यह है कि उनके ऊपर गौर करना, ठीक है ना, उनके बारे में फिक्र करना, सोचना, रिसर्च करना, तदब्बुर करना, ये मफहूम है गिर पड़ने का आयात के ऊपर, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है कि कुरान के ऊपर गौर फिक्र करना है, तदब्बुर करना है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने यही कहा कि ये गिर पड़ते नहीं है कुरान की आयात पर, यानी ये बिल्कुल ही तवज्जो ही नहीं देते कुरान की आयात, बल्कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ये इबादुर रहमान जो है ना, ये अंधे बहरों की तरह से नहीं गिर पड़ते, ठीक है, अंधे बहरों की तरह से नहीं गिर पड़ते हैं, बल्कि ऐसे गिर पड़ते हैं कुरान की आयात के ऊपर कि अपनी अपने आंखों को भी इस्तेमाल करते हैं, बसीरत को भी इस्तेमाल करते हैं, और अपने कानों को भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत गौर फिक्र के साथ गिर पड़ते हैं, ठीक है ना, यानी गौर फिक्र के साथ तदब्बुर करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो इसके दो मफहूम हजरत ने बयान फरमाए थे कि अंधे बहरों की तरह गिर पड़ने का मतलब एक तो ये हो गया कि जी बहुत गौर से सुनते तो हैं और रिसर्च भी करते हैं उसके ऊपर, लेकिन अमल नहीं करते, जैसे कि काफिर ओरिएंटलिस्ट, नॉन मुस्लिम्स होते हैं ये, जिनको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते हैं कि जो कि इस्लामिक साइंसेस के ऊपर रिसर्च करते हैं, PhDs करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर लिख रहे हैं, तफसीर के ऊपर PhD कर रहे हैं, हदीस के ऊपर PhD कर रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान नहीं होते, कलमा नहीं पढ़ते, अपने कुफ्र और शिर्क से तौबा नहीं करते, ठीक है। तो इनका वो कुरान के ऊपर रिसर्च करना इनको कोई फायदा नहीं देता, ठीक है। इसी तरह से आज के दौर के अंदर उन्हीं ओरिएंटलिस्ट के रास्ते पर चलने वाले बहुत सारे मुसलमान भी हैं, जो कि उन यूनिवर्सिटीज में जाकर के इस्लाम के ऊपर PhD कर लेते हैं किसी न किसी साइंस में, इस्लाम की किसी साइंस में,
ठीक है, लेकिन उनकी जिंदगी जो होती है फिस्क व फजूर का मजमुआ होती है, गुनाहों का मजमुआ होती है, बल्कि अच्छी खासी बदईमानी भी होती है, बद एतिकादी भी उनके अंदर होती है। ठीक है, तो एक तफसीर इसकी ये है, अगर किसी को कोई इश्काल हो इस तफसीर के ऊपर तो पूछ लिया करें, ठीक है, लिख करके यहाँ पे चैट विंडो पे आप अपना मैसेज लिख दें अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से कुरान को समझना ये अंधे बहरों की तरह से गिरना है कि अगर आपके ऊपर कुरान का कोई असर ही ना हो रहा हो, राइट, ना तो ईमान ला रहे हो, या अगर पहले से पैदाइशी मुसलमान थे तो आपकी जिंदगी में तकवा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। दूसरी तफसीर क्या है अंधे बहरों की तरह से गिरने की? दूसरी तफसीर ये है कि कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं और अमल भी करते हैं, लेकिन अब लेकिन का जवाब आप दे दें ताकि आपकी भी थोड़ी पार्टिसिपेशन हो जाए। अमल भी करते हैं कुरान के ऊपर, लेकिन आगे जुमला अगर आप कंप्लीट कर दें कोई, लेकिन क्या करते हैं? होता है ना क्लास पार्टिसिपेशन की भी तो नंबर्स होते हैं ना, तो यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम जो है वो तो है नहीं स्कूल कॉलेजों वाला, ठीक है, तो यहाँ पर तो नंबरिंग सिस्टम जो है वो अल्लाह ताला की रजा और आखिरत की जजा यानी सवाब। तो अगर आप क्लास पार्टिसिपेशन करेंगी तो क्योंकि हम और आप जो है यहाँ पे सिर्फ इसीलिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हमें सवाब मिले कुरान को समझने का सुनने का, ठीक है, तो फिर वो वाले नंबर्स जो है ना फिर क्लास पार्टिसिपेशन के ऊपर मिलेंगे, और कोई जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ है बस टाइम पास करने के लिए, तो उसको क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर्स यानी सवाब नहीं मिलेगा। चलिए इंशाल्लाह मिल जाएगा, हम अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखते हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद ही जाएगा, ठीक है। अपने राय से काम लेते हैं, अपनी राय से काम लेते हैं, अच्छा, अपनी सोच के मुताबिक अमल करते हैं, बड़ों से पूछ कर नहीं करते। ये किसी ने प्राइवेटली लिखा है तो आप लोग पढ़ नहीं सकती होंगी, उन्होंने लिखा है कि अपनी सोच के मुताबिक अमल करते हैं, बड़ों से पूछ कर नहीं करते। अच्छा ठीक, और आपने लिखा कि लेकिन दिल दुनिया में यानी अपने हिसाब से अमल करते हैं, अपनी आसानी देखते हैं। चले पार्शली तो आप सबके जवाब सही हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें चंद अल्फाज और शामिल कर लेती ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते जवाब, कि अपनी राय के मुताबिक अमल करते हैं लेकिन सहाबाए कराम के बताई हुई तफसीर के मुताबिक अमल नहीं करते, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि अपनी राय के मुताबिक कुरान पर अमल करते हैं लेकिन उलमाए कराम के बताए हुए मफहूम के मुताबिक अमल नहीं करते, उलमाए कराम के बताए हुए मफहूम के मुताबिक अमल नहीं करते। इस जवाब में ना फिर सब कुछ कवर हो जाता है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि उलमाए कराम का जो लफ्ज आपने इस्तेमाल कर लिया ना तो इसके अंदर आज के दौर के उलमा भी आ गए, 100 साल पहले के भी उलमा आ गए, 400 साल पहले के भी उलमा आ गए और 1400 साल पहले के उलमा भी आ गए। 1400 साल पहले के उलमा कौन थे? सहाबाए कराम, ठीक है, इस उम्मत के सबसे पहले उलमाए कराम कौन थे? सहाबाए कराम, सही है। तो इसमें फिर सारे लोग कवर हो गए कि भाई उलमा जो होते हैं ना तो उनके पास जो होती है एक यानी अथॉरिटी होती है, ठीक है ना, अथॉरिटी होती है बिकॉज दे हैव लर्नड फ्रॉम द टीचर्स। सहाबाए कराम पहले उलमाए कराम थे इस उम्मत के, तो उनके पास अथॉरिटी कुरान को एक्सप्लेन करने की उनके पास अथॉरिटी थी। कहां से आई अथॉरिटी उनके पास? क्योंकि सहाबाए कराम ने कुरान किससे सीखा? साहिब कुरान से सीखा, नबी अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी राय के मुताबिक कुरान को नहीं समझा बल्कि और उसके ऊपर अमल अपनी राय के मुताबिक नहीं किया बल्कि नबी अलैहिस्सलाम से सीख करके उसको उसके ऊपर अमल किया, ठीक है ना। तो इससे ना उनके पास कुरान की तफसीर करने की अथॉरिटी आ गई, सही है, सर्टिफिकेशन आ गई, ठीक है, सनद आ गई, डिग्री आ गई, आज के दौर में है ना, कोई डॉक्टर जो है वो बगैर MBBS की या FCPS की डिग्री के बगैर कोई जाकर के प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, लोगों को बताना शुरू कर दे कि जी ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये वाली दवा इस्तेमाल करो ये वाली दवा नहीं इस्तेमाल करो, तो है ना आजकल पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ये चलता है ना, जाली डिग्री या बगैर डिग्री के इसने कैसे काम शुरू कर दिया, है ना भाई। अगरचे कि वो सही दवाएं भी दे रहा हो सकता है कुछ लोग जो है वो सेहतियाब भी हो रहे हो बजाय उसकी दवाओं से, लेकिन फिर भी जाली डिग्री के साथ आप ये काम नहीं कर सकते या बगैर डिग्री के आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जिस तरह से आप दवाएं किसी को बगैर डिग्री के नहीं दे सकते है ना, ठीक है, जिस्मानी दवाएं, उसी तरीके से कुरान की जो आयात हैं, कुरान की जो तफसीर है, ये रूहानी दवाएं हैं, हमारी रूह की इस्लाह के लिए हैं, रूह के इलाज के लिए हैं, और ये तो जिस्मानी इलाज से कई गुना ज्यादा अहम चीज है ना, कई गुना ज्यादा सेंसिटिव चीज है ना, ठीक है ना। तो हम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो कम अहमियत की चीज थी उसमें तो आप डिग्री के बगैर किसी को एक्सेप्ट ना करें, और जो अल्टीमेट अहमियत की चीज है जिसके ऊपर हमारे हमेशा हमेशा की जिंदगी का दारो मदार है, हम उसको बगैर डिग्री के एक्सेप्ट कर लें किसी से, नहीं कर सकते ना, या कर सकते हैं। जो अहम असल अहम चीज है उसको तो हम कहें चलो भाई चलता है, जो चाहे अपनी मर्जी से कुरान की तफसीर कर ले, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि सवाब कुरान की कर रहा है ना, तफसीर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। नहीं भाई, वो अपना भी अपनी भी आखिरत बिगाड़ रहा है, वो आपकी भी आखिरत बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी दूसरी तफसीर जो है वो ये है कि सहाबा कराम और ताबईन और उम्मत के जो दीगर उलमाए कराम उनके बाद आए हैं, तो उनकी समझ के खिलाफ जा करके कुरान की तफसीर समझे और उसके ऊपर अमल करे, ये कहलाएगा यखिर्रु अलैहा सुम्मन व उमियानन, ठीक है, कि अंधे बहरे की तरह से कुरान के ऊपर गिर रहा है, ठीक है। तो अगला पैराग्राफ में उन्होंने एक अगले पैराग्राफ में एक छोटा सा वाकया बयान किया था कि हज़रत शिबी रहमतुल्लाह से किसी ने से इब्न औन रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अगर मैं किसी मजलिस में पहुंचूं जहां लोग सजदे में पड़े हों और मुझे मालूम नहीं कि कैसे सजदा है, तो क्या मैं भी उनके साथ सजदे में शरीक हो जाऊं। तो हज़रत शिबी रहमतुल्लाह ने फरमाया, नहीं, मोमिन के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि बेसमझे किसी काम में लग जाए, बल्कि उस पर लाजिम है कि बसीरत के साथ अमल करे, यानी आंखें खोल के अमल करे, और सिर्फ ये चेहरे की आंखें नहीं बल्कि दिमाग की आंखें खोल करके अमल करें, बल्कि चाहिए तो इससे भी ज्यादा कि चेहरे की आंखें भी खोल के अमल करे, दिमाग की आंखें खोल करके भी अमल करे, और दिल की आंखें खोल करके भी अमल करे, सही है, ये सारी आंखें हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं बसीरत के साथ अमल करना, ठीक है ना, यानी होश व हवास के साथ, गौर व फिक्र के साथ अमल करना। अब पिछली क्लास में इसकी हमने काफी लंबी तफसीर आपको समझाई थी कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की नहीं मानना, राइट, कोई इमाम साहब आ जाए कहने के लिए, कोई फकीह साहब आ जाए आपको कोई बात बताने के लिए, कोई आपको यानी शेख साहब आ जाए बताने के लिए, है ना, जो कि यानी एक रिकग्नाइज शेख है, वो आपको कोई मशवरा दे रहे हैं कोई बात समझा रहे हैं, आप कहें नहीं मैं तो नहीं मानूंगा। जैसे हमारे यहाँ एक वो कोई सियासतदान थी गुजरी, इनके बारे में लोगों ने यानी ये एक एक, एक मैं ना मानूँ, उनका एक नारा था मैं ना मानूँ, मैं किसी के नहीं मानूंगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बनने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, एक मैं किसी के नहीं मानूंगी, ठीक है, बल्कि मानना है लोगों की मानना है, लेकिन जिनके पास अथॉरिटी है उनकी मानना है, हर एक की नहीं मानना है, ठीक है। क्या मतलब कि जिनके पास अथॉरिटी है, जो उलमाए कराम है उनकी मानना है, उनके अलावा भेड़ चाल नहीं चलना है कि भाई सारे लोग तो कर रहे हैं चलो मैं भी करना शुरू कर देता हूँ ये वाला काम, क्योंकि इतने सारे लोग ये काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं भेड़ चाल, गोइंग विद द फ्लो, ये नहीं करना है, ठीक है। तो इस जुमले का ये मतलब था, तो उसके बारे में तो बात हो चुकी है, तो अब हम आगे चलते हैं, और किसी को सवाल हो तो अगेन कह रहे हैं कि जरूर से पूछ लिया करें। तो आगे फरमाते हैं कि इस जमाने में ये बात तो काबिले शुक्र है कि नौजवान और नौ तालीम याफ्ता तबका, नौ तालीम याफ्ता का मतलब क्या है कि जो जदीद तालीम है, ठीक है ना, जिसको कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये सारी जो मॉडर्न एजुकेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो नौ तालीम याफ्ता तबके में कुरान पढ़ने और इसके समझने की तरफ कुछ तवज्जो पैदा हुई है, ठीक है। तो इसमें यूथ भी मुराद है, नौजवान से मुराद तो यूथ होती है ना, यंग लोग जो होते हैं, और नौ तालीम याफ्ता से मुराद जो है वो नए नए ग्रेजुएट्स स्कूलों के यानी कॉलेजों के यूनिवर्सिटीज के जो नए नए ग्रेजुएट हैं वो भी इससे मुराद हो सकते हैं, और इससे मुराद जो है वो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ने वाला हर शख्स मुराद हो सकता है, चाहे वो 60 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, ठीक है। तो इन लोगों की तवज्जो कुरान पढ़ने और इसके समझने की तरफ कुछ पैदा हुई है, और इसके तहत वो बतौर खुद कुरान का तर्जुमा या किसी की तफसीर देख कर कुरान को खुद समझने की कोशिश भी करते हैं, मगर ये कोशिश बिल्कुल बेउसूल है। उसूल कहते हैं बुनियाद को, ठीक है। तो बेउसूल का मतलब क्या हुआ, बेबुनियाद, ठीक है ना, यानी इसकी फाउंडेशन नहीं है कोई, ये बगैर फाउंडेशन के खड़ी की हुई एक इमारत होगी, और आपको पता है कि कोई इमारत अगर बगैर फाउंडेशन के खड़ी कर दी जाए तो वो इमारत जो है ना वो टूट जाती है, ठीक है। उसूल की बात यह है कि दुनिया का कोई मामूली से मामूली फन भी निरी किताब के मुताला, निरी किताब का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो इसका मतलब है कि सिर्फ किताब का मुताला करने से किसी को मोतद भी नहीं हासिल हो सकता, यानी ऐसे नहीं हासिल हो सकता कि जिसकी बुनियाद पर जो है ना वो उस इल्म को समझ सके और दूसरों को भी समझा सके, ठीक है। तो सिर्फ बुक रीडिंग से जो है ना कोई इल्म ऐसे हासिल नहीं हो सकता, जब तक उसको किसी उस्ताद से ना पढ़े, यानी किसी उस्ताद कौन होता है, जिसको हम उस्ताद कहते हैं वो उस्ताद हो जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप जो है वो कभी गई हैं मैकेनिक स्टोर पे, गई हैं मैकेनिक की शॉप जो होती है, मैकेनिक की शॉप पे है ना, वहाँ पे ये लफ्ज़ बहुत चलता है, उस्ताद ये करना, उस्ताद उस्ताद, ऐसे वो बच्चे होते हैं ना वहाँ पे मैकेनिक शॉप पे काम करने वाले, तो वो कहते हैं अपने बड़े को जो है ना वो उस्ताद उस्ताद कहते हैं, ठीक है। तो किसी उस्ताद से ना पढ़े, किसी उस्ताद का मतलब यह है कि तफसीर जो है ना आप ले जाया करें मैकेनिक शॉप के ऊपर, है ना, और वहां पर चूंकि उस्ताद बहुत सारे होते हैं, बड़े मशहूर भी होते हैं, सब उनको उस्ताद उस्ताद कह रहे होते हैं, तो आप तफसीर की किताब लेकर के उनके सामने बैठ जाएं और उनसे कहें जी मुझे आप तफसीर पढ़ाएं क्योंकि आप उस्ताद हैं, क्या ख्याल है आपका, ऐसे तफसीर पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, चलिए ये बताएं कि क्यों उन उस्ताद साहब से जो है वो कुरान की तफसीर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, जवाब दें जरा ताकि आपको आपके जरा आपके जहन के दरीचे खुलें, है ना, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए भाई उस्ताद साहब से, किसी वजह साहब से सवाल करना है, ऐसी मजाक करने के लिए नहीं करना है ना भाई, वो उस्ताद साहब है ना उधर मौजूद मैकेनिक शॉप पे, तो तफसीर क्यों नहीं पढ़े उससे, क्योंकि वो उस्ताद तो हैं और हजरत भी यहाँ पे यही लिख रहे हैं, He is the उस्ताद of cars only. वो subject specialist नहीं, इस subject के specialist नहीं है ना भाई, है ना, agree करते हैं, कोई इसे disagree करता है, तो बताया कि नहीं जी वो तो उस्ताद हैं, वो लोगों के लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनको उस्ताद उस्ताद कहते हैं, तो तफसीर भी उनसे पढ़ लेनी चाहिए, कोई है आप में से माशाल्लाह 27 स्टूडेंट्स हैं और 28 जो है ये आजिज है, तो 27 स्टूडेंट्स में से कोई डिसएग्री करता है इस बात से, उम्मीद है कि नहीं करता होगा, वरना फिर उनके लिए शायद ये क्लास मुनासिब क्लास नहीं है, किसी और क्लास में उनको एडमिशन देना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई क्योंकि वो उसूल क्या बना, इल्लत क्या बनी कि वो तफसीर के उस्ताद नहीं है, तो भाई है तो वो उस्ताद लेकिन तफसीर के उस्ताद नहीं है, तो आप उनसे तफसीर नहीं पढ़ सकते, तो क्या ख्याल है जो फिलोसफी के उस्ताद थे जो यूनिवर्सिटी के अंदर, अब हम जरा लंबी जंप मार करके ना एकदम से यूनिवर्सिटी में पहुंच गए मैकेनिक शॉप से, ठीक है ना, वहां पर जो है जो फलसफे के उस्ताद हैं तो उनसे तफसीर पढ़नी चाहिए फिर, क्यों, इसलिए कि वो बड़ा अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं और खुशबू लगा के यूनिवर्सिटी में आते हैं, मैकेनिक शॉप में जो उस्ताद होता है ना वो अच्छा साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहनता और खुशबू लगा करके नहीं आता, तो इन दोनों उस्तादों में फ़र्क हुआ ना, तो हम जो फिलोसफी के उस्ताद साहब हैं उनसे तफसीर पढ़ सकते हैं, क्या ये इल्लत थी मैकेनिक शॉप के उस्ताद साहब से ना पढ़ने की, इल्लत का मतलब होता है वजह, ये तो वजह नहीं थी ना कि उनके कपड़े अच्छे नहीं है, उनके कपड़ों में से खुशबू नहीं आ रही, बल्कि वजह ये थी कि उन्होंने तफसीर में स्पेशलाइजेशन नहीं करी है, इस वजह से उनसे नहीं पढ़ेंगे। तो यही इल्लत जो है वो तो यूनिवर्सिटी के उस्ताद साहब के ऊपर भी अप्लाई हो रही है कि उन्होंने भी तफसीर जो है वो स्पेशलाइज नहीं किया है, ठीक है ना, यानी तफसीर के असातिज़ा से तफसीर नहीं पढ़ी है, उन्होंने अपने दूसरे मजामीन पढ़े, लेकिन हम जो है ना वो उनसे जाकर के तफसीर पढ़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो है ना वो हमें अंग्रेजी बोलते हुए नजर आते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए नजर आते हैं, और जो है जरा वो हमें जरा एक सॉर्ट ऑफ अपने हिसाब से एक इज्जत वाले इंसान नजर आते हैं, ठीक है, नहीं किसी से नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट को उसी के स्पेशलाइज्ड टीचर से पढ़ सकते हैं और दूसरे से नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, चाहे वो मैकेनिक वाला सब्जेक्ट हो या वो फिलोसफी वाला सब्जेक्ट हो या बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश लिटरेचर उर्दू लिटरेचर अरबी लिटरेचर, अरबी लिटरेचर का कोई उस्ताद हो उससे भी आप कुरान नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो अरबिक लिटरेचर का उस्ताद है, ठीक है ना, तफसीर एक अलग सब्जेक्ट है, अरबिक लिटरेचर एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इल्लत को समझ जाए ना बंदा तो फिर वो उसूल फिर हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, और अगर इल्लत ही समझ में ना आए ना तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा होता, ठीक है, यानी किसी बात की वजह समझ में ना आए तो फिर आप पढ़ते चले जाएं आपको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो फरमाया कि मालूम नहीं कुरान और उलूम कुरान ही को क्यों ऐसे समझ लिया गया है कि जिसका जी चाहे खुद तर्जुमा देखकर जो चाहे उसकी मुराद मुतय्यन कर ले, ये बे उसूल मुतालिया जिसमें किसी माहिर उस्ताद की रहनुमाई शामिल ना हो, ये भी आयात इलाहिया पर अंधे बहरे होकर गिरने के मफहूम में शामिल है, ठीक है। मुअतद बिही का मतलब जो है ना वो सच्ची बात ये है कि मैंने एग्जैक्टली तो इसको नहीं चेक किया है, ठीक है, लेकिन इसको हम अपने सर्फ की नॉलेज की बुनियाद पर अगर समझने की कोशिश करें जो कि गलत भी हो सकती है, तो इसका ताल्लुक जो है ना वो लगता ये है कि मुतअद्दी, ना मुतअद्दी का जो लफ्ज़ है वो हरूफ असली तो वही है, ठीक है, तो नहफ के अंदर आपने पढ़ा है ना लाजिम और मुतअद्दी, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ कि आप पढ़ी हुई हैं ये किताबें नहव और सर्फ की, तो मुतअद्दी लाजिम कौन सा फेल होता है कि जिसका असर सिर्फ अपने ऊपर होता हो, और मुतअद्दी वो फेल होता है कि जिसका असर दूसरों के ऊपर भी होता हो, ठीक है, तो अगर तो इसकी वही मफहूम है, ठीक है, तो फिर मुअतद बिही का मतलब वो हुआ कि ऐसा इल्म कि जिसके ऊपर के दूसरे भी एतमाद कर सकते हो, या ऐसा इल्म जिसको आप दूसरों तक भी पहुँचाने के काबिल हो सकते हो, ठीक है, तो मुअतद बिही जो इल्म है ना वो बगैर उस्ताद के हासिल नहीं होता, यानी इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन, ठीक है, वरना इस लफ्ज़ को डिक्शनरी में भी देख करके इंशाल्लाह और कंफर्म कर लेंगे, ये उर्दू की डिक्शनरी असल में मिलती नहीं है और अच्छी नहीं होती है, वो बात समझ में नहीं आती, उलूम को समझने के लिए उर्दू की डिक्शनरीज जो है ना उनके साथ अच्छा तजुर्बा नहीं रहा है साथ जिसका कम से कम, तो अरबी ही की बुनियाद पर उनको समझने की कोशिश करते हैं फिर उनको। तो अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम की तौफीक बख्शें। यहाँ पर आपकी क्लास में गालब नहीं लेकिन मर्दों की क्लास में वो शेर पढ़ा था जिसने जो अपने बड़ों से सुना है, फारसी का शेर है कि हर आ कारे के बे उस्ताद बाशद, यकीन दानी के बे बुनियाद बाशद, हर आ कारे, इसका मतलब होता है कि हर वो काम के बे उस्ताद बाशद जो कि बगैर उस्ताद के होता है, हरा कारे के बे उस्ताद बाशद, हर वो काम जो बगैर उस्ताद के किया जाता है, यकीन दानी के बे बुनियाद बाशद, ठीक है, यकीन जानो कि वो बे बुनियाद होता है, ठीक है ना, उसकी बुनियाद उसकी फाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है, जरा एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, काम से तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बगैर उस्ताद के कोई काम सही नहीं होता बेबुनियाद होता है, तो इसी में ना एक बहुत अहम इसका यानी इसकी एप्लीकेशन बहुत अहम एप्लीकेशन इसकी ये भी है कि सिर्फ उलूम की हद तक नहीं बल्कि इस्लाह में भी इलाज मुआवजे में भी, इलाज मुआवजा इज इक्वल टू इस्लाह। इस्लाह जो है वो किस चीज की जाती है, जो खराब हो चुकी हो, जो बिगड़ी हुई हो, उसकी इस्लाह की जाती है। और इलाज किसका किया जाता है, किसी सेहतमंद शख्स का इलाज किया जाता है, किसी हेल्दी शख्स का आप इलाज करते हैं? नहीं, जिसकी सेहत बिगड़ी हुई हो उसी का इलाज करते हैं ना, ठीक है ना। तो फिजिकल बॉडी के लिए इलाज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और रूह के लिए उमूमी तौर पर इस्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मफहूम दोनों का एक ही है। जब रूह खराब हो जाती है उसके अंदर रूहानी बीमारियां आ जाती हैं, शहवत वाली एक्सट्रीम दर्जे की शहवत हो जाती है कि हराम की तरफ माइल होता है, राइट, एक्सट्रीम शहवत, या ये कि जरूरत से ज्यादा बहुत हर वक्त ये दिमाग पे सवार हुआ हुआ है ना, जैसे कुछ लोगों को हुआ होता है, सही है। तो ये रूहानी बीमारी है शहवत की। उसी तरह गुस्सा की रूहानी बीमारी तो इंशाल्लाह आती होगी, समझ लिया तो आपके अंदर खुद ही होगा, या फिर आपके अंदर अगर नहीं भी है तो घर के किसी और फर्द के अंदर तो यकीनन होगा। आज के दौर में ना कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर एक दो या सारे शदीद गुस्से के मरीज ना हो, ठीक है ना। हर घर में आपको कम से कम एक तो ऐसा मिल जाएगा, और कुछ घर तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं कि हर बंदा ही जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म के गुस्से का मरीज है, ठीक है। तो गुस्से वाली रूहानी बीमारी तो आती है ना समझ में कि किस किस्म की चीज होती है ये, है ना। फिर तकब्बुर जो है वो अलग रूहानी बीमारी, जिसका तो वैसे ही सारे के सारे शिकार हुए हैं आजकल, जितने भी पढ़े लिखे और थोड़े से खाते पीते लोग होते हैं सारे के सारे जो है वो तकब्बुर। और खुद पसंदी भी एक ऐसी बीमारी है रूहानी कि जिसमें बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो ये रूहानी बीमारियां ना, इनका भी इलाज करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये इलाज भी जो है वो निरी किताब के मुताले से नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसके लिए भी उस्ताद की जरूरत पड़ती है, यानी किसी एक्सपर्ट जो के इन रूहानी बीमारियों का इलाज जानता हो, ठीक है ना, उसने अपने बड़ों से सीखा हो इसका इलाज, ठीक है। तो अपनी इस्लाह भी जो है वो इंसान खुद नहीं कर सकता, ठीक है ना। छोटी छोटी बीमारियों की इस्लाह तो कर सकता है, कुछ इधर उधर से पढ़ लिया सुन लिया, छोटी बीमारियों की इस्लाह तो फिर भी इंसान खुद से कर सकता है, लेकिन बड़ी बीमारियों की इस्लाह इंसान खुद से नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके घर में आपके बच्चे को 99 बुखार हो जाता है और थोड़ा सा उसको कुछ वायरल इन्फेक्शन लगता है, तो हर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, बल्कि ऐसे ही शुरू कर देते हैं, पैनाडोल खाना शुरू कर देते हैं, टाइलेनोल खाना शुरू कर देते हैं, है ना, और जो है वो थोड़ा वो ले लेते हैं, इनहेलर वगैरह ले लेते हैं या कोई भाप वगैरह ले लेते हैं, तो ठीक हो जाता है बंदा, बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बुखार 103 पे पहुंच जाए, दो तीन दिन तक जारी रहे और कुछ और भी सिम्टम्स आपके आना शुरू हो जाएं, तो फिर भागते हैं ना डॉक्टर के पास, फिर खुद क्यों नहीं इलाज करते भाई, किताबें मौजूद नहीं है, इंटरनेट के ऊपर सारा का सारा लिटरेचर मौजूद नहीं है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं ना। बिल्कुल यही मामला जो है वो रूह के इलाज के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इट अप्लाइज एवरीवेयर अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, 13वीं सिफत हम पढ़नी शुरू करते हैं। अगर आपको 12वीं सिफत के डिस्कशन के ऊपर किसी किस्म का सवाल हो तो जरूर से पूछें। 13वीं सिफत में ये वाली आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीन यकूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अय्युन वज़अलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। ये जो इबादुर रहमान होते हैं, मेरे खास बंदे, ये वो लोग होते हैं जो कि कहते हैं, यकूलूना ये कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, हब लना बना दे या हिबा करे हमें, हिबा कर हमें, दे हमें, तोहफा कर हमें, मिन अजवाजना हमारी अजवाज में से, हमारी स्पाउसेस में से। स्पाउस अंग्रेजी का ऐसा लफ्ज है कि जो कि शौहर और बीवी दोनों पर अप्लाई हो जाता है। तो वो शौहर अगर ये वाली दुआ मांग रहा है तो बीवी के लिए मांग रहा है, और बीवी अगर ये वाली दुआ मांग रही है तो शौहर के लिए मांग रही है, ठीक है ना, कि मेरे शौहर को आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा बना दीजिए। तो हब लना मिन अजवाजना, हमें हमारी अजवाज में से, व जुर्रियातिना और हमारी जुर्रियात में से। जुर्रियात में स्पाउस नहीं आती, बल्कि जुर्रियात के अंदर औलाद आ जाती, ठीक है, छोटे आ जाते हैं, ठीक है ना। स्पाउस को अल्लाह ताला ने ना यहाँ पर जुरियात में शामिल नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसे क्या पता लगा कि स्पाउस जो होता है ना, या तो आपके लेवल की चीज होती है, या आपसे बड़ी चीज होती है, या अगर छोटी भी होती है तो बस एक बहुत कम दर्जा छोटी होती है, ठीक है ना। जैसे कि अल्लाह ताला ने मर्द को जो है वो औरत से एक दर्जा खाली ऊपर रखा है, तो एक दर्जे के ऊपर जो है ना ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इसको जुरियत के अंदर शामिल नहीं किया है, बल्कि इसको जो है एक अलग कैटेगरी बनाई है, और इसके बारे में फिर अलग तफसीलात कुरान और हदीस में मिलती हैं। बहरहाल, तो बना दीजिए हमारी अजवाज में से और हमारी जुरियात में से कुर्रत आयुन, आंखों की ठंडक, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें बना दीजिए लिलमुत्तकीना, मुत्तकियों के लिए, ठीक है ना। शुरू में जो लाम है ना उसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे लिए से, फॉर। इमामन, इमामन कहते हैं लीडर को, या जो आगे आगे चलता है, जिसके पीछे पीछे लोग फॉलो करते हैं उसको इमाम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे नमाज के अंदर एक इमाम होता है तो बाकी सारे जो है ना वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। वो रुकू में जाएगा तब लोग रुकू में जाएंगे, अगर कोई इमाम से पहले रुकू में चला गया उसकी नमाज फासद हो जाएगी, है ना। तफसीलात अपनी जगह पर, लेकिन इमाम से आगे नहीं जाना है भाई, ठीक है ना। तो इमाम इसको कहते हैं कि जिसकी तकरीर की जाती है, पीछे पीछे चला जाता है। अब इसकी तफसीर में हजरत लिखते हैं कि इस आयत में अपनी औलाद और अजवाज के लिए अल्लाह ताला से ये दुआ है कि उनको मेरे लिए आंखों की ठंडक बना दे। आंखों की ठंडक का मतलब तो फरमाते हैं कि आंखों की ठंडक बनाने से मुराद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर के मुताबिक ये है कि उनको अल्लाह की ताअत में मशगूल देखे, ठीक है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ही पैदा हो चुके थे, ठीक है ना। इनकी जो वालदा थी वो गालिबन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमा थी, ठीक है। तो ये जब पैदा हुए तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है ना वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उनको लेकर के भी आए, ठीक है। तो इन्होंने गोया के अपने पैदाइश के वक्त में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, लेकिन इतनी छोटी उम्र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने वाला जो है ना वो सहाबी के दर्जा उसको हासिल नहीं होता, ठीक है ना। सहाबियत का दर्जा हासिल होने के लिए करीबुल बुलूग़ वाली जो उम्र होती है ना वो जरूरी होती है, जैसे कि 9 साल, 10 साल, 8 साल, ठीक है ना। ये बुलूगत के करीब की उम्रें होती हैं। तो यहाँ तक के लोग तो फिर भी सहाबा में दाखिल हो गए, ठीक है ना, लेकिन इनसे छोटे लोग जो है ना वो सहाबा में दाखिल नहीं हुए। तो ये तो यानी ये तो 2 साल के थे कि नबी अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया, ठीक है ना। तो उस वक्त तो बिल्कुल ही शऊर नहीं होता ना बच्चे को, तो इस वजह से ना ये सहाबा में दाखिल नहीं है, ये ताबईन में दाखिल है, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत ही ज्यादा इल्म और तक्वा के अंदर बड़े थे, यानी अजीम तरीन औलिया में उनका शुमार होता है, ठीक है। तो मुफस्सिर कुरान भी थे साथ साथ, तो उनकी तफसीर के मुताबिक आंखों की ठंडा का मतलब ये है कि अल्लाह की ताअत में मशगूल देखें, ठीक है ना। औलाद को हर वक्त नमाज पढ़ते हुए देखें नहीं, ठीक है, बल्कि जिंदगी के हर मामलात, तमाम मामलात को अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक अंजाम देता हुआ अपनी औलाद को देखें, ठीक है। यही एक इंसान के लिए आंखों की असली ठंडक है। और अगर औलाद और अजवाज की जाहिरी सेहत और आफियत और खुशहाली भी इसमें शामिल की जाए तो वो भी दुरुस्त है, ठीक है। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी औलाद को बीमार देख करके खुश नहीं होते, ठीक है ना। उनकी आंखों को ठंडक नहीं मिल सकती अपनी औलाद को तकलीफ में, अजियत में, बीमारी में देख करके ना, ठीक है। तो इस वजह से ये भी फरमा दिया कि जाहिरी तौर पर भी आफियत के साथ हो और रूहानी तौर पर भी आफियत के साथ हो, ये असल आंखों की ठंडक है, या कंप्लीट आंखों की ठंडक जो है वो ऐसे ही हासिल हो सकती है, ठीक है ना। अब शैतान जो है ना मर्दूद, तो उसका तो काम क्या है, शैतान मर्दूद का क्या काम है, चलें अगर आपसे पूछ लें। वो जो हमने दुआ शुरू में पढ़ी थी और उसका तर्जुमा भी पढ़ा था, तो उस दुआ को अगर सामने रखें, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक्ना तिबा, तो अब इस दुआ के मफहूम को सामने रख करके कोई शैतान का शैतान के जो जो मकसद हयात है उसको एक जुमले में बयान कर सकता है? शैतान का क्या मकसद हयात है? यानी कहने को तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन उसको ना हमने आपके लिए आसान करने के लिए आपको एक रेफरेंस दे दिया, वो वाली दुआ, अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्का। ठीक है, तो उस दुआ को जरा सोचें और बताएं कि शैतान क्या करता है फिर। हक देखने सुनने से रोकता है, वसवसे डालकर राय हक से हटाता है, यानी राय हक पर चलने नहीं देता, वसवसे डालकर राय हक पर चलने नहीं देता। लेकिन वो जो दुआ है तो उसमें तो चलने की तौफीक तो बाद में मांगी है ना, वरजुकना तिबा, तो चलने की तौफीक तो बाद में मांगी है, पहले क्या चीज मांगी अल्लाह ताला से? बातिल को हक बनाकर पेश करता है। एग्जैक्टली यही आपसे सुनना चाह रहा था। ठीक है, उस दुआ के कॉन्टेक्स्ट में शैतान का मकसद है आप ये पूछा था ना आपसे। ठीक है, वरना तो अल्लाह की याद से गाफिल करता है, जाहिर सी बात है भाई, अल्लाह की याद से गाफिल करता है शैतान, और जो है वो हक पे चलने नहीं देता, हक से बातिल की तरफ ले जाता है, हक से बातिल की तरफ ले जाता है। हाँ ये भी करता है वो कि हक पे चलने वाले शख्स को वहां से डिट्रैक्ट करके बातिल की तरफ चलाना शुरू कर देता है। हाँ, झूठ को सच करके दिखाता है। ठीक है ना, ये है असल चीजें कि जैसे ऊपर लिखा कि बातिल को हक बनाकर पेश करता है, और क्या करता है, इसका इसका कन्वर्स भी तो करता है ना। ठीक है, इसका कन्वर्स क्या है कि हक को बातिल बनाकर पेश करता है। ठीक है ना, तो शैतान का जो असल काम है ना वो ये है, वो ट्रिक्स्टर है, वो धोखेबाज है, झूठा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले वो ये काम करता है कि जो सच है उसको झूठ बना करके पेश करता है, और जो झूठ है उसको सच बना करके पेश करता है। ठीक है, तो अगर ये हमारी समझ में आ गई शैतान का असल मकसद है यार, तो फिर वो यहां पर वालिदैन के साथ भी यही करता है ना, कि जो आंखों की असल ठंडक है कि बच्चे जो है वो अल्लाह की अताअत में जिंदगी गुजारें, वो कहता है कि वो क्या वालदैन को क्या क्या कहता है, तुम्हारा बेटा तो मौलवी बन गया, तुम्हारे बच्चे का तो दिमाग खराब हो गया है, बेटी जो है वो पर्दा करना चाहती है ना, ये बेटी पागल हो गई है, क्या हो गया इसको, कजन से पर्दा कर रही है, बुर्का पहनना शुरू कर दिया है, छुपना शुरू कर दिया है, बोल्ड नहीं हो रही, पब्लिक स्पीकिंग करनी नहीं आती इसको, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करती, लोगों से जो है वो, यानी लोगों से मुराद गैर महरम मर्दों, लड़कों के सामने जो है वो यानी कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करती, क्या हो गया इसको, है ना, तो क्या हुआ फिर? औलाद जो है वो अल्लाह की अताअत में जिंदगी गुजारना चाह रही है, बेटा दाढ़ी रखना चाह रहा है, राइट, नमाजें पढ़ना चाह रहा है, ठीक है ना, तमीज के साथ रहना चाह रहा है अपनी जिंदगी में, और माँ बाप जो है वो परेशान हुए हुए, तो ऐसे माँ बाप को क्या आंखों की ठंडक मिल रही है? नहीं मिल रही ना उनको आंखों की ठंडक, क्यों नहीं मिल रही भाई? इसलिए कि शैतान ने जो है ना जो आंखों की ठंडक की असलियत थी उसको जो है ना वो पलट दिया, इनके जहन से, इनके जहन में उसको उलट कर दिया है, शैतान ने उलट कर दिया है। ठीक है ना, तो जो आंखों की ठंडक का असल सबब था उसको जो है ये अपनी परेशानी का सबब समझ रहे हैं। अगर ये मौलवी बन गया, अगर ये ज्यादा दीनदार हो गया, तो ये सोशली अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, लोग इसको इसको जो है वो पसंद नहीं करेंगे, है ना, ये लोगों में उठ बैठ नहीं सकेगा, ये अपना मुकाम नहीं बना सकेगा, ये खाएगा कहां से, इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये सारे ख्यालात वालदैन के जहन में आ जाएंगे, आ जाते हैं। ठीक है ना, और उस वक्त चाहे वो दीनदार क्यों ना हो, वालदैन, अच्छा मजे की बात तो ये है, अनफॉर्चुनेटली मजा तो मैं महावरतन कह रहा हूँ, अफसोस की बात ये है, ये कहना चाहिए, अफसोस की बात ये है कि ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ दुनियादार वालदैन नहीं कर रहे होते। दुनियादार से मुराद नाच गाने वाले वालदैन, जो कि हराम देखते हैं, हराम करते हैं, जिनके घरों के अंदर शराब भी पी जा रही होती है और जिना भी हो रहा होता है और हर किस्म की बुराइयां हो रही होती हैं, और दीन का कोई कोई नहीं होता उनके पास अमल दखल उनके घर में, उनको दुनियादार कहते हैं। बदकिस्मती हमारी यह है कि सिर्फ दुनियादार वालदैन ऐसी बातें नहीं करते, बल्कि अच्छे खासे दीनदार वालदैन अपनी औलाद को फराइज पर अमल करते हुए देख करके या फराइज पर अमल करते करने की कोशिश करता हुआ देख करके परेशान हो जाते हैं और उनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। ये हाल है दीनदार वालदैन का, है कि नहीं है? कभी आपके तजुर्बे में गुजरा इस तरह से? अगर अपनी जिंदगी में ही यानी खुद ही ये करते होंगे तो वो भी तजुर्बे में गुजरना ही हो गया ना, कि अगर आप खुद ही ये काम कर रही हैं तो अल्लाह से डरना चाहिए, ठीक है ना, अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा डरना चाहिए कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। इस आजिज ने पिछले दिनों आप ही के ग्रुप के ऊपर वो मैसेज भेजा था ना कि अगर हम इस तरीके से करेंगे ना तो होता है ना, दीनदार वालदैन चाहते हैं ना कि उनके बच्चे दीन पर चलें, ठीक है ना, लेकिन वो बच्चों को उतने दीन पर चलाना चाहते हैं जितना दीन जो है ना वो इनके लिए हजम, इनको हजम होता हो। समझती हैं हजम होने का मतलब क्या है? जो इनके लिए काबिल कबूल हो, सिर्फ उतने दीन पर अपने बच्चों को चलाना चाहते हैं, पूरे दीन पर चलता हुआ नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो ऐसे जो दीनदार वालदैन होते हैं ना, उनको अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि इनके पास तो दीनी वसाइल मौजूद थे, इनके पास तो कुरान और तफसीर और उलमा, ये सारी चीजें मौजूद थीं, इसके बावजूद इन्होंने इनकी नाकदरी करी, इन्होंने उनके साथ जो है ना वो बहुत बुरा सलूक किया। इस बुरे सलूक के ऊपर इनको शायद ज्यादा सजा मिल जाए, इन दीनदार वालदैन को शायद दुनियादार वालदैन के मुकाबले में ज्यादा सजा मिल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको मौके ज्यादा अता किए थे, राइट। तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, ठीक है। तो ये दीन जो है ना, ये अल्लाह की मर्जी पर चलाने का नाम है, ये अपनी मर्जी पर चलाने का नाम नहीं है कि मैं जितना चाहती हूं अपने बेटे को दीन पर अमल करना, बस वो उतना अमल करे, उससे ज्यादा नहीं अमल कर सकता। और इतनी जहालत है कि वही किताबी दीन, अभी पीछे पढ़ के आए हैं ना हम निरी किताब का मुतालिया, तो हदीसें पढ़ी हुई होती हैं सारी की सारी, हदीस में क्या लिखा हुआ है, माँ के कदमों तले जन्नत है ना भाई, हदीस है कि नहीं है ये, माँ के कदमों तले जन्नत है। अब यही माँ जो के अपने बेटे की दीनदारी से इसको तकलीफ हो रही है, ठीक है, शरीयत की पाबंदी से तकलीफ हो रही है इस माँ को, यही माँ जो है ना वो उस बेटे को कहेगी मेरे कदमों तले जन्नत है, तू मेरे बगैर कैसे जन्नत में जाएगा, जब तक मैं तुझसे राजी नहीं होंगी तो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों कह रही है ये, इसको कोई जन्नत का कोई ठेका लेकर क्या ये कहीं से, ये हदीस पढ़ी है ना, किताब में पढ़ा है ना इसने, ये हदीस की किताबें नहीं होती तो क्या होते, नबी अलैहि सलाम आकर के इसको बता रहे हैं कि ये ऐसा है, किताब में पढ़ा है इसने, शैतान इसको ये पट्टी पढ़ा रहा है कि नो मैटर व्हाट यू डू, ए माँ तू चाहे कुछ भी कर, तेरा बेटा तेरी रजा के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे तू अपने बेटे को फर्ज से रोक रही हो, फिर भी तेरी रजा के बगैर ये जन्नत में नहीं जा सकता। झूठ बोल रहा है शैतान, झूठ बोल रहा है शैतान इस माँ से, इसका बेटा ना सिर्फ जन्नत में जाएगा बल्कि शायद इसकी शफाअत भी इसका बेटा करेगा। पता है आपको, मां नहीं जन्नत में लेके जाएगी ऐसे बेटे को, बेटा मां को जन्नत में लेकर के जाएगा। सुन ले इस बात को कान खोल करके, इस मां को जो है ना इसका बेटा जन्नत में लेकर के जाएगा, ठीक है, अगर वो सही दीन पे चला ना वो जन्नत में जाएगा, और इस माँ को वो बेटा जन्नत में लेकर के जाएगा। दोबारा बोलो इस बात को, सुन लीजिए दोबारा, इस माँ को बेटा जन्नत में लेकर के जाएगा, माँ बेटे को जन्नत में नहीं लेकर के जाएगी। उसी तरह से बाप का भी मामला इसी तरह से, ठीक है ना, औलाद शफात करेगी माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वो हराम पे राजी थे, हलाल से उनको तकलीफ होती थी, ठीक है। तो हदीसें जो होती है ना वो एक कॉन्टेक्स्ट के साथ होती है, ठीक है ना, वो ऐसे नहीं होती कि हर जगह जो है वो हदीस अप्लाई करना शुरू हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों ने कुछ प्राइवेटली मैसेजेस लिखे हैं तो दूसरे लोग पढ़ नहीं सकते हैं, इस वजह से आज इस पढ़ करके सुनाता है, किसी को कोई सवाल हो इस बात के ऊपर तो जरूर कीजिएगा। तो किसी ने लिखा है कि माय फ्रेंड वांटेड टू डू पर्दा बट हर मॉम नेवर अलाउड, कि रिश्ता कहाँ से मिलेगा, एंड शी गॉट मैरिड विद अ बैंकर एंड नाउ इन बैड कंडीशन एज शी हैज 3 डॉटर्स एंड सफरिंग फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर नॉट हैविंग अ सन। तो माँ ने जो है वो बेटी पर्दा करना चाहती थी, माँ ने उसको इसलिए पर्दा नहीं करने दिया कि उसको रिश्ता कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इस जुमले की भी थोड़ी सी तफसील है कि बहुत सही कर रही थी वो माँ, कि कह रही थी कि रिश्ता कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वाकई वो माँ इसको जिस किस्म के मर्द से शादी करवाना चाहती थी, ऐसा मर्द जो है पर्देदार औरत से शादी नहीं कर सकता, राइट। माँ जिसके पैरों तले जन्नत है, सुनने कान खोल करके, सारी माए ना इस क्लास के अंदर सुन ले, माँ जिसके पैरों तले हदीस के मुताबिक जन्नत है, वो बेटी को पर्दा करने से रोक रही है क्योंकि उसको रिश्ता नहीं मिलेगा। भाई कैसे रिश्ता नहीं मिलेगा, अगर दीनदार बंदे को तलाश करेगी, राइट, अगर एक शरीयत की पाबंदी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बंदे को तलाश करती वो अपनी बेटी के लिए, क्यों नहीं करता वो इसकी बेटी से शादी, लेकिन माँ नहीं चाहती, ठीक है ना। अब माँ जिस किस्म के लड़के से इसकी शादी करना चाह रही थी, जाहिर है वो लड़का पर्दे वाली औरत से शादी नहीं करेगा, है ना। तो फिर उसको मिल गया उस माँ को बैंकर, ठीक है ना, सूद वाला जिसकी की आमदनी थी, लड़का मिल गया, और फिर उस लड़की से इसने शादी कर दी, अपने अपने यानी उस बैंकर की अपनी बेटी से शादी कर दी। अब बैड कंडीशन होना ना, ये चीज आई वॉन्ट प्रेस अपॉन इट, ठीक है ना, कि अब उसके साथ देखो कितना बुरा हुआ और उसकी हस्बैंड भी उससे राजी नहीं है, राइट, नहीं, इसको छोड़ दें, क्योंकि हम दीन के ऊपर अमल इसलिए नहीं करते कि दुनिया में हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना, ये नीयत ही गलत है कि दुनिया के हालात अच्छे, अगर दीन पे अमल करते तो दुनिया के हालात अच्छे हो जाते, अगर दुनिया के हालात खराब है तो उसका मतलब यह है कि यानी दीन पे अमल नहीं किया था, इस वजह से दुनिया के हालात खराब है। भाई ये तो दोनों तरीके से हो सकता है, दीन तो होता है आखिरत के लिए, ठीक है ना। तो बैंकर से शादी कर लेना, बेपर्दगी की जिंदगी गुजार लेना, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है, ठीक है ना। सूद की कारो की कमाई के साथ जिंदगी गुजारना और बेपर्दगी की जिंदगी गुजारना, ये अल्लाह की नाफरमानी है, आखरत गई। दुनिया में चाहे उसको उसका हस्बैंड, भाई क्या बैंकर्स अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते, बहुत सारे ऐसे बैंकर आपको मिल जाएंगे जो कि बड़ी बीवी से मोहब्बत करके बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो क्या उनका ये अमल अच्छा हो जाएगा? हाँ भाई, क्योंकि ये बीवी से मोहब्बत कर रहा है, घर के अंदर जो है वो बड़े मजे से जिंदगी गुजर रही है, तो बड़े अच्छे लोग हैं ये, बीवी बेपर्दा और शौहर जो है वो सूद की कमाई वाला, लेकिन घर के हालात अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, हमें तो बहुत पसंद आएंगे ये लोग, नहीं, इसकी बुनियाद पे फैसला नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो शुरू की बातें आपकी ठीक है, ये आखिरी बात आप रहने ही दें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, कि उनके घर में हालात खराब है, इस वजह से वो अफसोस हो रहा है, और जिसके घर में हालात खराब नहीं होंगे उसके ऊपर कोई अफसोस नहीं होगा, नहीं, हरगिज नहीं। जब ऐसा मामला पेश आए तो औलाद को क्या करना चाहिए, जब ऐसा मामला पेश आए कि वालिदैन जो है वो उनके दीन के रास्ते में रुकावट बन रहे हो ना, तो औलाद को जो है वो अल्लाह वालों के साथ मजबूत इस्लाही ताल्लुक बनाना चाहिए और उनकी मान के चलना चाहिए, अल्लाह वालों की मान के चलना चाहिए, ये है हल, ठीक है। क्यों ये बात कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह वाले जो होते हैं ना, वो इसको अल्लाह के रास्ते पे चलाएंगे, सुन्नत के रास्ते पे चलाएंगे, एंड एट द सेम टाइम वो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना भी सिखाएंगे, तालीम देंगे माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। बेशक वो तुम्हें हराम पे उकसा रही है, बेशक वो तुम्हें पर्दा नहीं करने दे रही, बेशक तुम्हें वो दीन पे चलने नहीं दे रही, लेकिन तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ, इखलाक के साथ पेश आओ, ठीक है ना। उनकी बात ना मानो लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो, ये अल्लाह वाले सिखाते हैं, ठीक है। अताअत करना जायज नहीं है माँ बाप की, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अताअत करना जायज नहीं है लेकिन हुस्न सलूक तो फिर भी करना है उनके साथ। तो अल्लाह वाले जो है ना, फिर औलाद को ऐसे लेके चलेंगे कि अल्लाह की मानने वाली भी बन जाए और माँ बाप के साथ भी अच्छे इखलाक के साथ पेश आने वाली बन जाए। तो अल्लाह वालों की मान करके, यानी फिर अपना इस्लाही ताल्लुक बनाए और फिर उनकी मान करके चले। मुसीबत यह है, होता क्या है ना अनफॉर्चुनेटली, कि अगर तो ये अच्छा, कोई अच्छे यानी पर्सनालिटी वाला बच्चा है, ठीक है, तो ये तो ना फिर दीन के रास्ते पर आएगा और फिर दीन वालों की मान करके चलेगा। लेकिन अगर ये खुद इतना ज्यादा बिगड़ चुका है अब तक, तो अब जो है ना, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना जो कि बहुत ज्यादा बिगड़ चुके होते हैं ना, तो अब जो है ना वो दीन को जो है वो बहाना बना रहे होते हैं खाली, ठीक है। तो वो अल्लाह वालों से अगर ताल्लुक भी रखेंगे ना, तो वो ताल्लुक भी जो है ना वो एक बहाने के तौर पर रखेंगे और मानेंगे मानेंगे कुछ नहीं उनकी। वो अल्लाह वाला उनको सिखा रहा है, वो दीन वाला उनको सिखा रहा है कि तुम शरीयत की पाबंदी भी करो और माँ बाप के साथ भी अच्छे से रहो, इसने मान के नहीं देनी, ठीक है ना। ये ना अपने माँ बाप की मान रहा है, ठीक है ना, कि हराम करे, ना ये नेक लोगों की मान रहा है कि हलाल करे, ठीक है ना, ये तो अपनी मन मर्जी चला रहा है। तो अब जो है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाती है, बहुत ही खराब सिचुएशन। इसके अंदर जो है ना, माँ बाप भी इसके खिलाफ और नेक लोग भी इसके खिलाफ, ना ये उनकी मान रहा है, ना ये उनकी मान रहा है, और जो है ना ये एक तमाशा हो रहा है। ये उसको ब्लेम कर रहे हैं, ये उसको ब्लेम कर रहे हैं, है ना। दीन वाले जो है वो माँ बाप को ब्लेम कर रहे हैं कि माँ बाप उसको दीन पे नहीं चलने दे रहे, और माँ बाप जो है वो दीन वालों को ब्लेम कर रहे हैं कि वो जो है ना वो मेरे बेटे को खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हकीकत क्या है कि असल में बेटा ही नहीं मानने वाला है। इसी वजह से आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह वालों के साथ जुड़े और फिर उनकी मान करके चले, तब उसकी जिंदगी जो है ना वो आफियत वाली बन जाएगी, ठीक है। तो A deendar person will never say anything for having daughter. In that context, I was saying. हाँ ठीक है, मतलब दीनदार भी नहीं, आपको मिल जाएंगे ऐसे दीनदार जो कि पर्दे के लिए तो तैयार हो जाते हैं, यानी पर्दा तो उसको दीन का हिस्सा समझते हैं, लेकिन बेटी की तरबियत करना जो है ना वो, यानी बेटी वाला मामला ना उनकी भी हलक में अटक जाता है कि जी बेटी क्यों नहीं हुई होगा। खैर ये अलग चीज़ है, ठीक है। आपका मकसद ये था, लेकिन मैं मेरा मकसद था कि आपकी जो चीज़ मुनासिब नहीं नज़र आ रही थी बतौर उसूल के, तो उसकी इस्लाह कर दी जाए, ठीक है। तो इस तरह से अल्लाह ताला से दुआ मांगनी कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, और कुर्रता आयुन को अल्लाह ताला की अताअत में समझना, सिर्फ जो है ना माल पैसे की रेल पेल हो जाना और अंग्रेज का एक ब्राउन अंग्रेज बन जाना, राइट, या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आ जाना, ये कुर्रत आयुन नहीं है, ठीक है। कुर्रत आयुन वो है जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई है, सहाबा कराम ने सिखाई है, और हमारे उलमा मशायख बताते हैं, वो है कुर्रत आयुन की असल तारीफ, ठीक है। तो शैतान इस तारीफ को उलट देता है, वो जो नहीं है कुर्रत आयुन उसको हमें ऐसे दिखाता है कि जैसे कि वो है तुम्हारे लिए कुर्रत आयुन, ठीक है ना। कितना माशाल्लाह, वो तो यानी ये जो माँ बाप हैं, होता है ना पाकिस्तान इंडिया के अंदर, चार बेटे थे माशाल्लाह, एक बेटा अमेरिका में है माशाल्लाह, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है माशाल्लाह, एक बेटा यूके में है, और माशाल्लाह एक बेटा जो है वो सऊदी अरब के अंदर है। कितना दिल से माशाल्लाह निकलती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कामयाबी यही है, चारों। अच्छा ये भूल जाते हैं कि माशाल्लाह ये तो बूढ़े हो चुके हैं, इनके पास भी कोई है कि नहीं है, इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, नहीं माशाल्लाह इनके पास तो कोई मदद करने वाला ही नहीं, माशाल्लाह इनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाला कोई नहीं, ये कोई नहीं बोलता है ना। तो बूढ़ा बूढ़ी भी बड़े खुश और लोगों को बड़े खुश होकर के बताते हैं कि मेरा एक बेटा उधर है, मेरी एक बेटी जो है वो कनाडा में बैठी हुई है, मेरा एक बेटा इधर बैठा हुआ है। उनके भी दिल के अंदर यही होता है कि यही तो कामयाबी थी जो कि हमने हासिल कर ली है ना। वो भी अपनी इस कामयाबी से बड़े खुश होते हैं कि उनका हर बच्चा जो है ना वो बड़ी पोस्ट के ऊपर है और बड़ा कमा रहा है, ठीक है, क्योंकि शैतान ने बिल्कुल ही उलट दिया है इन तमाम मामलात को, ठीक है। तो सिर्फ कुरान में अच्छी अच्छी बातें पढ़नी पढ़नी नहीं है कि ये करना है ये करना है ये करना है, बल्कि ये जो शैतान है ना, इस शैतान के जो हमारे ऊपर दांव चलते हैं और जो हमें धोखे दे जाता है, इन धोखों से बचना भी जरूरी है, वरना फिर ये रास्ता हमारा कामयाबी के साथ तय नहीं होगा और हम अल्लाह ताला का वसन नहीं पा सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शैतान के धोखों से वसवसों से महफूज फरमा दे और सिरात मुस्तकीम के ऊपर आसानी के साथ चला करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। वा आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।